योग किया, किया योग ठीक से हा? जो 5:30 बजे से आए थे वे जरा हाथ उठाना, मैं जा रही थी आगे। आज तो सब समर्पित भाइयों की बट्टी है, ऐसे बोले हा? वैसे तो समर्पित माना ही, जब बट्टी में पक गए है तभी तो समर्पित नाम पड़ा। अगर सोचा जाए, हम लोग जब शुरू शुरू में यज्ञ में आए तो बट्टी ही शब्द कहते थे, तो जब बट्टी में पक जाते हैं, और पकना अर्थात पकना किसको कहेंगे, ईंट जब बट्टी में पक जाती है तो उनका पूरा स्वरूप बदल जाता है, ढांचा वही रहता है, ढांचा नहीं बदलता है, ठीक है ना, ढांचा वही रहता है परंतु स्वरूप बदल जाता है, रंग बदल जाता है। तो अपना रंग तो नहीं बदलेगा, क्योंकि रंग स्थूल चीज है और उनको स्थूल आग दी जाती है। ये हमारी ज्ञान और योग की बट्टी क्या परिवर्तन करती है, क्या करती है परिवर्तन, हाँ ठीक से बोलो, स्वभाव संस्कार। इधर क्या जवाब दिया, क्या परिवर्तन करती है, ये हमारी ज्ञान और योग की बट्टी स्वयं के सूक्ष्म संस्कारों को परिवर्तन करके हमारा स्वरूप बदल देती है, क्योंकि ये हमारी पढ़ाई मनुष्य से देवता बनने की है। तो देवता बनना कहाँ मनुष्य, और वो भी कहाँ आसुरी दुनिया का मनुष्य, कहाँ तमो प्रधान मनुष्य और कहाँ सतो प्रधान देवता, कितना बड़े ते बड़ा कंट्रास्ट है। और इसके लिए ऐसा देवता बनाने के लिए जिन्हों की महिमा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी, ऐसा बनाने के लिए संपूर्ण विकारी दुनिया में बाबा हमें ज्ञान और योग करके सिखाते हैं, क्योंकि बाप हमारा सर्वशक्तिवान है, सर्वशक्तिवान बाप, सर्वशक्तिवान होने के नाते चाहे हम कितने भी अनेक जन्मों के चक्कर में आ गए, परंतु अनेक जन्मों का हिसाब किताब, अनेक जन्मों का खाता भरा हुआ है, लेकिन बाप हमारा सर्वशक्तिवान है। और जब हम सर्वशक्तिवान बाप के पास आए, अपना तो ऐसा अनुभव हुआ कि आए तो हमें तो पुराना सब भूल गया, सच पूछो तो अपना स्वभाव भी भूल गया कि हमारा स्वभाव क्या है, किस प्रकार जो बाबा जैसे चलाते रहे वैसे ही चलते रहे, क्योंकि बचपन में तो आए ही थे। तो ऐसी अंदर की हमारी वृत्ति, जब हम बाबा के पास आए हैं, सर्वशक्तिवान है और हम मनुष्य से देवता बनना है, तो कहाँ देवता कहाँ इस दुनिया का मनुष्य, सतो प्रधान और तमो प्रधान। बाबा कहते हैं कि स्वयं को देखो, मैं सतो प्रधान कहां तक बना, और उसके लिए समय समय पर बाबा हमें ये योग साधना की बट्टी क्योंकि साधना के सिवाय तो सिद्धि नहीं मिल सकती, सिद्धि अर्थात सफलता। तो हम क्या सफलता चाहते हैं? वर्तमान समय के अनुसार अभी के शब्दों में हम क्या सफलता चाहते हैं? स्वयं के प्रति। इस भट्टी में हमारा लक्ष्य है स्वयं को क्या करना है। मैं स्वयं के प्रति क्या चाहता हूँ, जो चाहता हूँ उसके लिए मैं स्वयं क्या क्या कर रहा हूँ, और क्या करते औरों के कारण मैं करता हूँ या न करता हूँ, ये सब बातें प्रश्न कहो अथवा ऐसी स्वयं से बातें सब किनारे कर देनी है। भट्टी माना मैं भट्टी में हूँ, और है या नहीं है उसको हमें नहीं देखना है। भले हम देखते हैं, लेकिन देही अभिमानी स्थिति कहती है स्वयं को देखो। और ये भट्टी स्थूल साधना की नहीं है। हम कोई आसन लगा के नहीं बैठे रहेंगे तीन तीन चार चार घंटा। भले हम कहते हैं हम तीन घंटा दो घंटा योग में बैठेंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम आसन लगा करके ही एक जगह बैठे रहेंगे। परंतु हमें ये अभ्यास पड़ जाए। अभी तक मैं समझती हूँ, अगर मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं हूँ, अभी तक कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरा मन सदा एकाग्र रहता है। कुछ न कुछ हलचल, कभी न कभी कोई प्रसंग के कारण हलचल होती है। और जब हलचल को बंद करना चाहते हैं, कभी तो फौरन बंद भी कर सकते होंगे और कभी अपने हाथ में संकल्प नहीं आते होंगे। तो यह है भट्टी, हम लोगों के लिए भट्टी अर्थात योग साधना, अर्थात हमारा मन ऐसा एकाग्र हो जाए जो कुछ भी होता रहे मन सदा स्थिर हो। वो नहीं एक दीवे गीत है, ये लड़ाई है दीवे और तूफान की। तूफान कितना जोर लगता है, परंतु ऐसे तूफान में दीवा अपना अटल है। उसका ये गीत बना है कि ये लड़ाई है दीवे और तूफान। अब हम बाबा कहते हैं बच्चे तुम अभी लड़ाई से परे हो जाओ। ब्राह्मण हो ना, ब्राह्मण थोड़े युद्ध करते हैं। ब्राह्मण अर्थात युद्ध करने वाले नहीं, ब्राह्मण जो भगवान का साक्षात्कार कराते हैं। भगवान की अभी भी दुनिया के अंदर ब्राह्मण ही दीदार कराता है ना, जाके मंदिर में ब्राह्मण को बिठाते हैं मूर्ति के आगे, ब्राह्मण जाके कथा सुनाते हैं। तो दुनिया में भी ब्राह्मण जात का कितना मान है, और हम तो ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण स्वयं आदि देव ब्रह्मा की संतान, प्रत्यक्ष ब्रह्मा की संतान। जिस प्रजापिता ब्रह्मा ने नई सृष्टि का कार्य स्थापन किया, उनके मुख की पैदाश हम। चलो आप कहेंगे मुख की नहीं, फिर भी तो महावाक्य तो सुन ही रहे हो ना। महावाक्यों के आधार पर ही तो ज्ञान सुन रहे हो। जो महावाक्य बाबा ने हम बच्चों को सुनाया है, वो ही तो आप लोग सुन रहे हो, और उसी ज्ञान को समझ करके ही तो बाबा के बने। तो क्यों नहीं कहे आप भी मुख वंशावली है। तो उस आदि देव जो सृष्टि का रचता है, जिसको दुनिया रचता बाप मानती है, उसी रचता पिता की हम डायरेक्ट संतान है। सरक करती गुफाओं में जाते और हमें कितना सहज मिल गया। आप लोग सोचो, भगवान सामने आ जाए और उनके आगे हम आ जाए और कुछ याद पड़ेगा? और सचमुच जब बाबा ने ये यज्ञ स्थापन किया, ये भट्टी बनाई और हम जो भी आए, हिस्ट्रियों में तो सुना है ना, जो भी हम आए इस प्रकार से ही आए जो हमें कुछ भी याद नहीं रहा। आप आश्चर्य खाएंगे, हमें अपना बर्थडे याद नहीं। ये तो पीछे सेवाओं पर निकले है, बाबा ने भेजा है यहाँ वहां, लौकिक में भी तो हमें जानकारी हुई, नहीं तो कुछ भी याद नहीं। और जो भी लौकिक से ले आए वो सब बाबा के अर्पण कर दिया। हमारा तो, हम तो उस दुनिया से मर गए, कभी दुनिया की तरफ बुद्धि उग गया है। चलो भाई, कहेंगे स्थापना का समय था, सर्वशक्तिमान बाप को अपना कार्य शुरू करना था, तो अपने कार्य के लिए अपने बच्चे भी ऐसे ही तैयार हो गए। लेकिन अब हम उस घड़ी पर पहुंचे हैं, किस घड़ी पर, जब कार्य संपन्न होने वाला है। इतना समय कार्य चलता आ रहा है तो वर्तमान समय के अनुसार बाबा क्या कहते, समर्पित अर्थात बाप समान। आज का स्लोगन याद है, आज के मुरली का स्लोगन, जिसको याद हो। अच्छा, मैं बीच में बोल देती हूँ, जरा ये ध्यान रखना, रोज के मुरली में कौन सी विशेष बात, बल धारणा का सार लिखत में आ जाता है, केवल उस पर ही नहीं, परंतु एक या दो बात हम अपने अपने योग्य मुरली से विशेष अटेंशन में रख करके उस पर हम अपना चिंतन करते रहे। ये रोज का काम आप अपने लिए याद रख के चलो, नोट कर दो, फिर देखो इससे कितना फायदा होता है। तो मैं बात कर रही थी समर्पित अर्थात वास्तव में बाप समान, अभी की भाषा में। अभी हम सबको लक्ष्य क्या है, हम बाप समान बने, बोलते हैं ना, हम बाप समान बने। जब हम कहते हैं बाप समान बने और यहाँ ये सब समर्पित भाई बैठे हैं, आज के स्लोगन में बाबा ने कहा समर्पित अर्थात अपने पन के अधिकार समाप्त किए हुए, और विस्तार में यही कहा है कि समर्पित अर्थात समान। तब तक समान नहीं बन सकते जब तक अपनेपन के अधिकार नहीं छूटे हैं। अभी इसका विस्तार तो और बहुत है, वो अलग क्लास रहेगा, लेकिन आज मैं इतना ही कहूंगी, जब हम समर्पित है और हमारी समर्पित भाइयों की विशेष रूप में बट्टी है, और यह बट्टी योग साधना मौन बट्टी रखी है। मौन का बड़ा भारी महत्व है। देखो ऋषि मुनि एक एक मास, दो दो मास जाकर के मौन में रहते हैं। क्यों? भले हम कहते हैं वो हठ योगी है, परंतु है तो उनों की साधना ना, प्राप्ति के लिए मौन में जाते हैं। तो भले हम हठ योग की साधना नहीं करते हैं, परंतु अपने पुरुषार्थ के लिए अगर किसी बात पर हमें पूरी विजय पानी है, तो जब तक हम अपने में अंतर्मुख न हुए हैं, तब तक हमारे अंदर वह शक्ति जागृत हो जो संपूर्ण रीति से उस बात पर विजय पा सके, जल्दी नहीं हो सकेगा। आप सब अपने अपने अनुभव से देखो, भले वर्तमान समय हमारे पास सेवाओं का स्कोप बहुत है, सेवाएं हमें खुशी देती है, सेवा हमारी स्थिति को भी बनाती है। सेवा से चलो कभी मूड ऑफ होंगे, कभी कुछ ऐसा ख्याल होगा, हमारे सामने सेवा आ जाएंगी तो हम तुरंत अपने को उस स्टेज में ले आएंगे। लेकिन सेवाओं में डिस्टर्बेंस भी तो बहुत आता है, तो ऐसी स्थिति हो जो डिस्टर्बेंस भले आवे, आए जहां संगठन है और वो भी बेहद का संगठन, वो भी अलग अलग झाड़ों की लकड़ियां कही जाती है, माना अलग अलग परिवार वाले, देह के संबंध तो अलग अलग है ना, तो उसमें परिस्थितियां तो आएंगी ही, परंतु वो होते हुए भी हम स्वयं को ऐसे अडोल बना के चले, तब हमारे में वह शक्ति जागृत हो जो परिस्थितियों को अच्छी रीति से समझ करके पार कर सके। ऐसे नहीं परिस्थिति से कोई हम किनारा कर देंगे, इसको कोई पार कहा जाएगा, भाई सेवा में परिस्थितियां आती है, डिस्टर्बेंस बहुत होते हैं, हम तो नहीं जाएंगे संगठन में सेवा करने, नहीं जाएंगे तो बैठे रहेंगे, तो और भी संकल्प चलेगा। तो डिस्टर्बेंस से किनारा करने से हम विजयी नहीं बनेंगे, पर डिस्टर्बेंस पर विजय पाने से उसमें हम उसको पार कर लें, पार करने में ही हम विजयी बनेंगे। ये सवाल आता है किस प्रकार हमें पार करना है। तो अगर हम ये शब्द ही अपना, जब हम अपन को समर्पित कहते हैं, और आज बाबा ने बताया समर्पित अर्थात समान, समान अर्थात संपूर्ण संस्कार परिवर्तन। दादी ने कहा ना, ये वर्ष भी है संस्कार परिवर्तन का, और ये बट्टी विशेष संस्कार परिवर्तन के लिए रखी गई है। तो हम अंदर रियलाइज करें, यह हमारी मौन बट्टी, मैं समझती हूँ आप लोग इस मौन को बड़ी ऑनेस्टी से, बड़ी लगन से पालन करेंगे। अभी गीत में सुना ना, मौन की भाषा जो समझे अंतर का सुख वो पाता है। अंदर ही अंदर हमें रियलाइज होगा, कई बातें हैं मोटे रीत में हम रियलाइज नहीं करते हैं, हमको हमारी कोई भूल कहेगा तो हमें देहभान आ जाएगा, हम जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। परंतु अगर हम अपने एकांत में अपने से बैठ के बात करें, और सारी दिन का हम अपना चार्ट देखें, आपस में हमारा व्यवहार कैसा है, सारे दिन में हम कितना एक दो से खुश रहे, अगर वो चार्ट स्वयं में देखें तो स्वयं को पता नहीं चलेगा कि क्या क्या कहाँ कहाँ हमारा हो गया, कहाँ हम खुश नहीं रहे, कहाँ डिस्टर्बेंस हुआ, कहाँ हम राइट नहीं थे, पता चलेगा या नहीं चलेगा पता? कांध तो हिलाओ, नहीं तो हम समझेंगे सुनते ही नहीं है, कहीं कुछ और सोच रहे हैं। चलेगा पता? अंदर ही अंदर जब अपने को देखो तो पता चलता है ना। अब समझो पता भी चला, पर परिवर्तन कैसे हो? हर एक परिवर्तन चाहता है, हर एक अपने में दिव्य संस्कार चाहता है, हर एक बाप समान बेहद के गुणों से भरपूर होना चाहता है। चाहता है या नहीं? चाहता है ना। आखिर ये हमारी चाहना कब पूरी होगी और कौन करेगा? क्या हम कहेंगे बाबा को करना होगा तो करेगा? बाबा कहते हैं मैंने नॉलेज तुमको किस लिए दी है, नॉलेज भी दी, इतनी मेहनत की तुमको पढ़ाने की, और फिर भी मैं ही करूंगा तो बाकी पढ़ाया किस लिए? लौकिक में नहीं होता है, बाप जब बच्चे को बहुत पढ़ाता है और वो बच्चा कमाई न करे तो नहीं बोलता है तुमको इतना सारा पढ़ाया, तुम्हारे पर इतना खर्चा किया और फिर भी तो घर में बैठ कर मुझे ही तुम्हारी पालना करनी है क्या? लौकिक में बाबा तो ऐसा नहीं बोलता है, बाबा तो पालना करता रहता है, पर नियम बना हुआ है अनादि। देखो बाबा कितना स्वतंत्र, अनादि काल से नियम बने हुए हैं, जो करेगा सो पाएगा। हर आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है, जो जितना करेगा उतना ही पाएगा, ये अनादि नियम बना हुआ है। चाहे कोई कितना भी एक दो की पास खातरी करे, कुछ भी करे, चाहे हम कितना भी बाबा को रड़िया मार के प्रार्थना करें, लेकिन कर्मों का भोग तो मिलेगा ही। हाँ, वो बाबा शक्ति दे देता है अगर सचमुच हम दिल से बाबा को याद करते हैं और दिल से हम पश्चाताप करते हैं, दिल से हम अपना जो भी ऐसा सुख है बाबा के आगे रख देते हैं, तो बाबा से वो शक्ति जरूर हमें मिलती है, जो उसी भोगना का हमारे पर असर न हो, प्रभाव न पड़े, हम अपनी सेवाओं में लगे ही रहे। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, जिसको कहा जाता है कर्मों की गति बड़ी गहन है। आप लोग जब से आए हैं, जो बहुत पुराने पुराने होंगे भाई श्याम पचौरी जैसे, जगमोहन नाम है आपका, ऐसे और भी है विद्यासागर वगैरह, राम प्रकाश कई है, ऐसे कई है पुराने पुराने जिन्होंने ऐसे ऐसे क्लासेस सुने हैं, बल्कि बाबा के ऐसे कई चरित्रों की बातें सुनी है, लेकिन ये कर्मों की गति इतनी गहन है, हर एक का हिसाब अपना अपना है। इसलिए कहा जाता है अपने पुरुषार्थ के लिए, बाबा भी कहता है, मुरलियों में भी 2-3 दिन पहले आया, पुरुषार्थ के लिए तुम मालिक हो, लेकिन संगठन में जब हम कोई मिलके कार्य करते हैं उसमें हमें मालिक बन के रहना है। तो मालिक भी है और मालिक भी है, जवाबदार है स्वयं के पुरुषार्थ के लिए, स्वयं की स्थिति के लिए, लेकिन जब संगठित का कार्य है उसमें जहां मेजॉरिटी वहां मैं, तो ये दोनों प्रकार से चलना, वहां पर लौकिक में जो सेवाएं होती है, ड्यूटीज होती है, उनका अलग अलग, उसमें भी हमने देखा है इसी प्रकार से अगर व्यवहार है, बड़ा होते भी अगर अपने साथियों से मिलके चलते हैं, उनको प्यार से चलाते हैं, तो वो उनका हर कहना मानते हैं। लौकिक में भी इस बात का काम में आता है, आती है ये बात। तो ये मौन की भाषा गीत जो सुना, अगर पूरा गीत आप देखो ना, याद करो या फिर से एक दो बार सुनो, ये हर एक लाइन में मौन की भाषा का क्या क्या फायदा है वो बताती है। दैवी गुण भी हम मौन से धारण करते हैं। कौन नहीं चाहेगा कि मैं दिव्य मूर्ति बने, चाहना सबकी है, हर एक चाहता है मेरे में कोई बुरा संस्कार न हो, मैं कभी कटुवचन न बोलूं, हर एक चाहता है, बुराई को कोई पसंद नहीं करता है, फिर भी हमारे से कभी कभी हो जाती है, कारण आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है। और अगर मैं कहूं कि शुरू शुरू में जब से आए हैं हर एक, क्योंकि बाबा ने हमें इसलिए ये अभ्यास कराया है, अभी हम भेंट करती है कि हमें बाबा ने इतना वर्ष जो भट्ठी में रखा, तो तो अगर सोचा जाता है तो क्या किया, बस यही पढ़ाई की। तो अभी अगर खाली आपको पढ़ाई और योग कराया जाए तो बोर हो जाएंगे। ये तो करके थोड़े दिन आते हो, मधुबन में तो होता है, तो भी अगर घूमने फिरने का नहीं रखो तो याद करते रहेंगे, क्योंकि समय ऐसा है, वृत्तियां ऐसी हैं। और हमारे दिनों में चार दीवारों के अंदर कभी हमें ख्याल नहीं आता था कि कहां बाहर निकले। पुरानी दुनिया है, वैराग, वैराग शब्द कहते हैं, वैराग भी नहीं, बिल्कुल त्याग, बेहद का त्याग। कभी संकल्प नहीं आएगा कि पुरानी दुनिया में जाएं, देखें, घूमें, फिरें, बस जितना हो सके अपनी तपस्या में। तो 14 वर्ष बाबा ने हम बच्चों को तपस्या कराई, उसमें कैसे हम अपने आप को बनाते जाएं, अपने से बातें करें। एकांत में जाकर के घंटे घंटे, दो दो घंटे हम लोग बैठते थे। आत्मा का अभ्यास है आप में ऐसा कोई जो रात रात जाग करके आत्मा का अभ्यास करता हो? एक शुरू शुरू में, चलो भाई अब तो पुराने हो गए, शुरू शुरू में जब आते हैं, देखो कहां भी कोई भी शुरू में नई बात सीखो तो उसमें अपना पूरा ध्यान देना पड़ता है। ये बाबा ने हमारा सहज मार्ग रखा है और हमें विस्तार से रोज रोज नॉलेज मिलती जाती है, मिलती जाती है। परंतु जब नई नॉलेज है, आत्मा समझ में आ जाती है, विस्तार अभी इतना है जो सुनने से ही वो बात समझ में आ जाती है, लेकिन उसका अभ्यास वो तो केवल सुनने से नहीं होता है ना। उसका अभ्यास हमें पूरा करना है और पक्का अभ्यास हमें महसूस हो, मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, ये भी है। हम चलते जाए, हमें ये फीलिंग आती जाए। जब आत्मा की फीलिंग आएंगी तो देखो आपके नैन चैन बदल जाएंगे, आपकी अंदर की वृत्ति बड़ी रूहानी स्नेह संपन्न बन जाएंगी, आपका एक दो को देखना बड़े स्नेह युक्त हो जाएगा। शुरू शुरू में हम लोग खास भी इस बात का अभ्यास करते थे, उस समय नॉलेज का विस्तार नहीं था, सिर्फ इतना ही विस्तार, शरीर 5 तत्वों का है, मैं आत्मा मन बुद्धि सहित तू, अगर अच्छे कर्म करेंगे तो देवलोक में जाएंगे और अगर बुरे कर्म करेंगे तो कहां जाएंगे, तो जाकर के बुरा जन्म लेंगे। इतना ही सार में ज्ञान था, एक आत्मा का ज्ञान। परमात्मा का स्पष्टीकरण भी बाद में हुआ, क्योंकि परमात्मा तो हमारे सामने स्पष्ट था और हमने फौरन ही सभी ने मान लिया कि भगवान के सामने हम आए हैं। बड़ी बात तो ये थी। तो अपने से बातें करना, अपने का अपना अभ्यास करना, अपने से ये पूछना, बरोबर मुझे ये अनुभव होता है, उसका प्रमाण चलते फिरते मुझे स्मृति रहे, देखते हुए मुझे स्मृति आए, मैं स्मृति स्वरूप बन करके देखूं, मैं स्मृति स्वरूप हो करके बोलूं, विशेष विशेष रूप से ये अभ्यास करते रहे। एक एक घंटा एकांत में बैठेंगे, बड़ी मस्ती से वो नशा चरा रहे। हम विश्व के मालिक के बच्चे हैं, हम भी विश्व के मालिक हैं। ऐसा नशा चरा रहे, एक घंटा दो घंटा उस नशे से नीचे आओ तो नीचे ही नहीं उतरे, देखें एक दो को तो जैसे कि ये सब ऊंची स्थिति, सब ऊंची ऊंची स्थिति वाले दिखाए, क्यों खुद की स्थिति ऊंची है। अब ये अभ्यास, मौन की भट्टी जो हम अपने अपने कार्य व्यवहार में रहते जो अभ्यास पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं, वह अभ्यास एक हम क्या शब्द कहें, सच्ची दिल से अपने आप से सच्चे हो करके करें एकांत। इसलिए आप लोगों के क्लासेस भी जास्ती नहीं रखे गए हैं, विशेष रूप से एक क्लास सुबह को। कहां कोई ऐसी जरूरत पड़ी, कोई ऐसी बात हुई दादी ने कहा तो शाम को रखेंगे, कभी कभी रोज नहीं। 5 दिन है, वैसे कहा जाता है पंजाबी भाषा में 5 गुरु के गंज, गंज है भरपूर है। तो 5 दिन है आप लोगों को, 22, 23, 24, 25, 26 पूरे सचमुच 5 है। आज का दिन ग्रेस में, अब 5 दिन के अंदर गंज, शक्तियों के भंडार, गुणों के भंडार, खुशियों के भंडार। बाबा ने तो हम बच्चों के लिए सब भंडार खोल दिए हैं, और बाबा ही कहते हैं जितना जिसको लेना हो लेवे, मेरे भंडारे में कोई कमी नहीं पड़ेगी। लेने वाले कितना ले सकते हैं, अपनी शक्ति जागृत करें। तो यह मौन भट्ठी हम बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान बने, जो कुछ हमें अपने में भरना है, शक्तिशाली बनना है, हमें अपनी कमजोरियों को खाली देखते नहीं रहना है, सोचना ही है, कमजोरी को जानना है, ऐसा भी नहीं जाने नहीं खाली नशा रहे बस हम तो ऐसे हैं। नशा रखना है, पर नशे के भेंट में व्यवहार भी ऐसा, चलन भी ऐसी, बोल भी ऐसा, दृष्टि भी ऐसी, क्योंकि हम कर्म क्षेत्र पर हैं, कर्म इंद्रियां हमारे साथ हैं। जब कर्म इंद्रियां हमारे साथ है तो हर कर्म इंद्री जो हमारे में अध्यात्मक नशा है, बाप का नशा है, हर कर्म इंद्री से वो रूहानी नशा प्रसिद्ध हो, तो अपने आप अंदर में हम अपनी कमजोरी को समझ करके, लेकिन उस वो भरेंगी वो कैसे परिवर्तन होंगी, उसके बदले मेरे अंदर कौन सी शक्ति, कौन सा गुण जागृत हो, तो ये कमजोरी खत्म हो जाए। पहला गुण हमारे में चाहिए कौन सा, कौन सा पहला गुण चाहिए, हम अपने आप को देखें, अपने में स्वयं के पुरुषार्थ के लिए मैं स्वयं जिम्मेवार हूं, ये हम दृढ़ता अपने में जागृत करें, और इसी दृढ़ता के साथ हम दूसरे से भेंट न करें, दूसरे को न देखें। चलो कुछ देखें तो बाबा कहते हैं बच्चे फॉलो फादर मदर, फादर के गुणों को याद करें, बाप की सबसे बड़े ते बड़ी दृष्टि, क्योंकि जैसी वृत्ति ऐसी दृष्टि, और वृत्ति का आधार हमारी स्मृति पर है। स्मृति तो बाबा ने हम बच्चों को दिला दी है, अब वह स्मृति सदा जागृत रहे। बाबा हमेशा व्यक्त, बाप दादा ने हमेशा कहा है बच्चे ऐसा नहीं समझो मैं तो हूं ही बाबा का ना, मैं तो भगवान का बच्चा हूं ही। नशा ठीक है, नेचुरल निश्चय अच्छी बात है, परंतु हुई बाबा का और कर्म में बाप समान न हो तो उसको तो और तो नहीं मानेगा ना कि हाँ मैं बाप समान हूँ या बाबा का हूँ। और तो हमें उस दृष्टि से देखते हैं व्यवहार मेरा कैसा। बाप के भी व्यवहार ने हमें बताया ना कि परमात्मा है। हम बच्चों से इतना प्यार, हम बच्चों के प्रति हर एक के प्रति चाहे कैसा भी हो सर्व के प्रति कल्याण की भावना। पहली सर्व के प्रति आत्मा है। बाबा की हिस्ट्री में सुना होगा या कभी कभी जो बताते हैं बाबा ने कैसे बैठ के अपने से आत्मा का पुरुषार्थ किया है। जसोता आत्मा, पुतु आत्मा, प्रलय आत्मा, हर बच्चा जो घर में परिवार, एक एक के प्रति बाबा का अभ्यास। ये आत्मा हर एक को नाम से देखते हुए, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, तो ये पुरुषार्थ है ना। अंदर ही अंदर का अकेला, हम लोगों के सामने तो बाप है, इतने सब है वो बाबा। पहला पहला मनुष्य, पहला बाप का रथ, और इतना अपने से पुरुषार्थ, इतने कॉन्फिडेंट से। तो पहली बात तो अंदर में निश्चय बुद्धि हम कितने हैं, स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि और बाप के प्रति निश्चय बुद्धि, इतना निश्चय, इतना निश्चय हो जो बाप की हर बात में हम दृढ़ रहे। बाप की हर बात में दृढ़ता आता। बाबा हम बच्चों से एग्जाम लेते थे, अगर बाप तुम्हें कहे जाकर के समुद्र में कूदो तो कूदेंगी? फिर भले थोड़ी चिटचैट हम लोग कर लेते थे, बाबा ऐसा कहेगा ही नहीं ना। बाबा कैसे हम लोग को कहेगा? बाबा अपने बच्चों को ऐसे बाबा से हंसी में भी ये भी बोल देते थे। बाबा कहते थे, बाबा कहे या न कहे, समझो बाबा कहती है, क्या करेंगे, क्या करेंगे, सोचेंगे ना भाई समुद्र में जाएंगे, मर जाएंगे। अभी बाबा मिला है, इतने में कैसे मरेंगे, हमें तो स्वर्ग की बात ही लेनी है, अभी कैसे मरेंगे। इस प्रकार से बाबा हमारे निश्चय को देखते थे। इतने तक निश्चय, मरने का हुक्म मिले तो मरने के लिए तैयार। अंदर में ये न समझे बाबा नहीं कहेंगे, ये भी समझो फेल। और अगर अंदर में ये सोचते हैं तो सचमुच बाबा कह भी सकते हैं। तो इस प्रकार से तो पहला ये अंदर इतना निश्चय, और उसमें फिर ये बात आती है बाबा कहते हैं मैं आत्मा हूं। इतना निश्चय आत्मा, आत्मा अर्थात आत्मा में कोई विकार थोड़े होता है, आत्मा में बुरी भावनाएं थोड़ी आती है। आत्मा और विश्व कल्याणकारी पिता की संतान। तो जैसे बाप की सर्व के प्रति दृष्टि रूहानी, एक तरफ रूहानी दूसरी तरफ कल्याणकारी। और आप इस बात का प्रैक्टिस करें, जब भी आप आपके मन में ये कल्याण की भावना आ जाएंगी, सर्व के प्रति आप कल्याण भावना से नजर करो, दृष्टि घुमाओ, आपको एक एक के प्रति बड़ा रूहानी स्नेह जागृत रहेगा, आपकी दृष्टि में रूहानियत बढ़ जाएंगी, क्योंकि अंदर में ये भावना जागृत हो गई ना। स्मृति रही, बाप हमारा विश्व कल्याणकारी है, बाप की सबके प्रति कल्याण की भावना है, तो स्मृति रही बाप और बाप के दृष्टि की। तो मैं भी ऐसे बाप का बच्चा हूं, मेरी भी सर्व के प्रति यही दृष्टि बनी रही। तो स्मृति से वृत्ति बनी और वृत्ति से वो दृष्टि, तो वो रूहानियत हमारे नैनों से, हमारे चेहरे से प्रत्यक्ष होती है। जब हमारे नैनों में रूहानियत है तो आप सोचो हमारा व्यवहार कैसा रहेगा। हम बोल बोलेंगे बड़े अच्छे शब्द, बड़े प्रेम से, थोड़े और प्रेम से, जस्ती बोलने की दिल ही नहीं होंगी। तो यह हमारी मौन भट्टी, हम अंदर ही अंदर अपने को रियलाइज करें, अंतर का सुख वो पाता है। अब देखो अंदर का अतीन्द्रिय सुख जो हम अपने अपने व्यवहार में रहते हैं, कभी खुशी में है, कभी गम है, कभी गुस्सा आता है, कभी कोई का अच्छा लगता है, कभी नहीं अच्छा लगता है, कभी चिड़चिड़ापन आता है, कभी दृष्टि वृत्ति इधर उधर जाती है, जो भी कुछ बातें हैं, बस अंदर ही अंदर अपनी आत्मा स्वरूप जो ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उस अपने स्वरूप को अंदर ही अंदर इमर्ज करो। यह मौन भट्टी इसलिए रखी है, आप अपने अनादि स्वरूप, कभी अपना अनादि स्वरूप इमर्ज करो। हूं वो तो बैठा ही हूं, पर जो मैं बैठा हूं वो इमर्ज रूप रहे। जैसे ये नाम रूप दिखाई पड़ता है तो बाहर की आंखें ये नाम रूप देखती है, अंदर अपनी मन बुद्धि रूपी आंख, तीसरा नेत्र कहा जाता है ना, तो ये अपनी दिव्य बुद्धि और शुद्ध मन, वह हमारी आंख, देखो अपनी शुद्ध आत्मा को। जिनों का ये अभ्यास हुआ, बस सब कुछ बुद्धि से किनारे और हम अपने आत्मा स्वरूप में स्थित रहे, वो जरा हाथ उठाना। तो यह अभ्यास चलते फिरते उठते बैठते पक्का कर दो, बहुत अच्छा काम में आएगा। बाबा तो अभी हम बच्चों को बार बार याद दिला रहे हैं, अंतिम समय नजदीक है, बल्कि सामने खड़ा है। हर समय अपनी अंतिम घड़ी को याद रखो, और अंतिम घड़ी याद करते हुए स्वयं अंत मत्ते सुगत्ते, अंत में एक बाप और हम अपनी वह बाप समान कर्मातीत स्थिति बनी रहे, जो यह पुराना चोला छोड़ने में कष्ट न हो, ऐसा लगे हम जो कुछ करना था जो बाप ने कहा बरोबर हमने किया। जबकि अभी समय है, थोड़ा भी समय है, तो हम ऐसी स्टेज बना के रखें। तो यह अभ्यास विशेष रूप से मौन भट्टी इसलिए ही रखी है कि हम अपना अभ्यास जो दुनिया में, जो वहां पर अपनी अपनी सेवाओं में हम पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं, वो हम यहाँ ऐसा पक्का कर दें, जो फिर से वहां जाए तो हम स्वयं स्वयं को नया अनुभव करें। इसलिए यह मौन भट्ठी रखी गई है। अंतर्मुख रहे, मन के एकाग्रता को बढ़ाते जाए, जिससे हमारे में एकाग्रता की शक्ति बढ़े। जो एकाग्रता की शक्ति हमारे अंदर, जो हम सोचेंगे सोचते हैं, हमारे में फलाना फलाना दिव्य गुण होना जरूरी है। एकाग्रता की शक्ति द्वारा वह दृढ़ता हमारे अंदर सहज वह गुण इमर्ज करेंगे। आप लोग यह अभ्यास करके देखो। कोई भी शक्ति का लक्ष्य रखो, कोई भी गुण का लक्ष्य रखो, लेकिन उसके लिए जरूर एकांत एकाग्रता की आवश्यकता है। और एकांत और एकाग्रता का मजा आनंद हम तब ले सकेंगे जब स्वयं स्वयं की इच्छा से हम अपने को अंतर्मुख रखें। अंतर्मुख अपने अंदर का मुख, आत्मा अंदर कौन, भक्ति में कहते हैं ना, अंदर अंदर बैठा है राम। वो तो ईश्वर को सर्वव्यापी कह के कहते हैं, पर अंदर में आत्मा बैठी है। और आप लोग आत्मा को इस प्रकार से याद करो, आत्मा शुद्ध है, आत्मा पवित्र है, अर्थात मैं परम धाम निवासी आत्मा। जब मेरा अनादि स्वरूप, जब मैं परम धाम में हूं तो बिल्कुल शुद्ध, कोई विकार नहीं, कोई इम्प्यूरिटी नहीं, क्योंकि कोई कर्म इंद्री नहीं, कोई कर्म नहीं। लेकिन मैं हूं तो वही ना, अंदर तो वही आत्मा है ना जो परम धाम निवासी है, और तो कोई नहीं है ना। तो हम इस प्रकार स्वयं को याद रखें कि मैं परम धाम निवासी शुद्ध आत्मा, सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता की संतान, उनके साथ परम धाम में रहने। ऐसे एक नशे से याद करो, वो नशा आपके अंदर शक्ति पैदा करेगा, हिम्मत पैदा करेगा। नहीं तो कभी कभी अपनी गलतियों को देख के, कभी अपनी परिस्थितियों को देख के, कभी अपने साथ जो साथी होते हैं वो देख के, कभी कभी हम निराश हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में तो हम स्थिति बनाना बड़ी मुश्किल है। सर्वशक्तिवान के बच्चों के लिए क्या मुश्किल है, जबकि बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा साथी हूं। मुश्किल को सहज बनाने वाला मैं सर्वशक्तिवान हूं और वो मेरा बाप है। क्यों नहीं मैं बाप को अपना ऐसा साथी बना के रखता हूं जो कोई भी मुश्किल में मुझे सहज मदद मिलती रहे। पर ये कॉन्फिडेंस, विश्वास, पक्का विश्वास, ऐसे नहीं कभी मदद न मिले तो कहे देखो बाबा कहाँ मदद करता है। बाबा मदद करता नहीं करता, ऐसी बात नहीं, मेरी स्थिति नहीं होती है, मेरे अंदर संकल्पों की हलचल होती है, मेरे संकल्पों में यहाँ वहां की बात, आगे पीछे की परिस्थिति घूमती रहती है। तो मैं बाबा की मदद को कैसे स्वीकार कर सकेंगे, वो मैं पकड़ ही नहीं सकेंगे ना, क्योंकि शुद्धता नहीं है। सर्वशक्तिवान की शक्ति शुद्ध है, उसमें शुद्धता समाई हुई है। शुद्धता ही बाप के शक्ति को स्वीकार कर सकती है, शुद्धता ही बाप की मदद को अनुभव कर सकती है। इसलिए शुद्धता मेरे अंदर, मन भी शुद्ध, बुद्धि भी शुद्ध, कहा जाता है शुद्ध बुद्धि और साफ दिल। अपने आप को देखें, कोई कहे या न कहे, कोई कहेगा तो देव मान आता है ये मेरे लिए क्यों कहता है, और फिर कहेंगे खुद फिर क्या है। फौरन हमारी दृष्टि ऐसे चली जाती है, दृष्टि तो क्या वाचा में भी आ जाती है, संकल्प तो चल ही जाता है ना। तो ये संकल्प हमारे अंदर अशुद्धता लाता है, हमारी शक्ति को हीन करता है। ऐसी ऐसी सूक्ष्म बातें हम समझ करके वर्णन नहीं करो, समझ करके हम शुद्धता को इमर्ज करें। कैसे मेरे में शुद्धता इमर्ज हो, बार बार याद करें मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं सारोग्र संपन्न देवता, पहला स्वरूप मेरा देवता का है। देवता शब्द ही शुद्धता को, दिव्यता को सिद्ध करता है। ऐसे ऐसे हम अंदर ही अंदर अपने आप से बातें करें, सारा दिन क्या करेंगे, और अंतर्मुख होकर के जब हम अपने से बातें करते हैं, देखो करते करते आपके अंदर एकदम साइलेंस आ जाएंगे, हलचल बंद हो जाएंगे, क्योंकि अपने को देख रहे हैं ना, अपने शुद्ध स्वरूप को देख रहे हैं। शुद्धता में अनेकता तो है नहीं ना, शुद्धता एकदम क्लीन, साफ, स्वच्छ। देखो अंदर क्या क्या इमर्ज होता है। इसलिए अभी आप लोगों की दिनचर्या ऐसे बनाई है, मैं थोड़े में बता देती हूं, क्योंकि अभी आगे का तो कार्य चलना ही है। बाकी तो ये बातें ऐसी है पुरुषार्थ की, करते जाओ। हम लोग यज्ञ में जब आपस में पुरुषार्थ की बातें करते थे, सारी रात जागते रहते थे, करते ही रात को थे, क्योंकि दिन में अपना कार्य करना। परंतु अभी आपका दिन रात इसी कार्य के लिए है, इसका मतलब ये नहीं रात को जागते रहो और दिन में जब योग करो तो झुटका खाते रहो, ऐसा नहीं करना। इसलिए आपका रात का योग नहीं रखा है, क्योंकि हमें पता है कि इतनी प्रैक्टिस नहीं है। योग आपका वो ही है 3:30 बजे जागना, 4 बजे योग में बैठना। पर मैं समझती हूँ कल सुबह का योग आप सभी अगर ओम शांति भवन में करो तो अच्छा रहेगा। पर उसमें एक बात है, आराम से आपको कोचिस मिल जाएंगे। जरा सावधान रहना, अच्छी रीत मुंह मुंह धुलाई करके आ जाना और ठीक से अपना योग करना। फिर योग 4:45 तक कौन कराएगा, वो दो भाई मकर रखेंगे। अच्छा आ गया सतीश भाई। सतीश भाई ने आप सबके लिए स्वागत गीत बनाया है, तब तक मैं बता देती हूँ। तो सुबह का योग का वही टाइम है, फिर वही क्लास का टाइम है, लेकिन क्लास में आप लोग 6 बजे पहुंच जाओ तो अच्छा है, तो आधा घंटा वो फ्रेश योग भी कर सकेंगे ओम शांति भवन में। 6 से 6:30 वो योग करके, वो तो सामने योग कराने वाले होते ही है जनरल मधुबन के, और फिर 6:30 से मुरली होती है, कभी दादी को आने में 7:45 बज जाते हैं, 8 बजे तक समझो, लगभग 8 बजे तक वो मुरली क्लास रहता है। उसके बाद आपका नाश्ता रहेगा, मौन तो है ही है, ये भी हम लोगों ने देखा है, जब मौन रखो ना तो टाइम बहुत बच जाता है, और जब मौन से छुट्टी दे दो टाइम कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता है। तो ये मौन रखा गया है, तो फिर वहां से आके नाश्ता करेंगे, फिर 9 से 10 ये आपको एकांत में रटन करो, और अपना अपना विचार शुद्ध संकल्प, सुबह से लेकर अमृत वेले के योग में बैठे क्या शुद्ध संकल्प चले, कौन सी स्टेज रही, अपने आप से वो जरा थोड़ा थोड़ा थोड़े 2 शब्दों में, एक आधा लाइन में, या कोई बात पर विस्तार से ज्ञान का मथन हो तो वो लिखो। ये 9 से 10 तक आप एकांत में रटन करो, और कुछ न कुछ अमृत वेले का योग और जो भी मुरली सुनो, कोई विशेष बात पर जरूर मंथन करो और उसको अपने डायरी में नोट करो। 8-8, 10-10 पेज नहीं बैठ के लिखना, जो डायरी उसमें आपकी भर जाए। सबको डायरी है या किसको नहीं है? हाथ उठाओ किसको डायरी न हो। सबको है। एक वैसे तो मिलती भी है लिटरेचर से, क्योंकि आप लोगों की सौगात दूसरी रखी गई है, और ये डायरी यहाँ की तो सबको एक बार मिल ही चुकी होंगी, जबकि आप लोग 2-3-4 साल वाले हैं। 1 साल वाले जो मधुबन में ही पहला बार आया है, भट्टी में पहला बार बहुत आए हैं, 1 साल वाले जो मधुबन में ही पहला बार आए हैं वो हाथ उठाए। देखो मधुबन में ही पहला बार आए, उठो उठ के करे हो, उठो।
बहुत अच्छा, दादी जी की प्रेरणा हम सब सुन रहे थे। मन तो कहता है सुनते रहें, लेकिन एक कार्यक्रम अभी और आगे है।